हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 95. वीरेश पर गुस्से में हमला करते हुए वो सारी चुड़ैलें आगे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वहां पर एक तेज आवाज गूंजी, बंदी बना लो इन सबको, मेरे विवाह में विघ्न डालने की इन लोगों ने हिम्मत की है, इसकी सजा इन्हें मिलेगी। वो आवाज सुनते ही सभी ने नजर उठाकर उसे तरफ देखा तो काफी ऊंचाई पर हवा में एक और चुड़ैल थी। उसके बहुत ही लंबे बाल जो कि घुटनों पर आ रहे थे खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। उसने कल और लाल रंग के चमकदार शीशे लगे हुए कपड़े पहने थे और उसके आगे नीले रंग की थी। दिखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसने पारंपरिक चुड़ैलों वाली गहने भी पहने हुए हैं और कपड़े भी उसी तरह के हैं, लेकिन उसके सर पर काले रंग का ही शीशे से चमकता हुआ एक तक है जिससे कि समझ आ गया वो उनकी रानी है। वीरेश तो ये बात समझ गया, लेकिन चंद्रिका हैरानी से आगे पड़े हुए उसे तरफ ही देख रही थी। उसने इस तरह की कोई चुड़ैल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी और वो सच में बहुत खूबसूरत है। उसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि वो चुड़ैल है। देखने में तो वो एकदम परी लग रही है, लेकिन इस वक्त काफी गुस्से में है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसकी आंखें बड़ी हैं और दांत पीसते हुए वो वीरेश पर चंद्रिका की तरफ देख रही है। उसने ही अपनी शक्तियों का उपयोग करके वीरेश पर हमला किया और उसके सुरक्षा कवच को बर्बाद कर दिया, नहीं तो बाकी सारी चुड़ैल एक साथ मिलकर भी उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ नहीं पा रही थी। ठीक उसी वक्त चुड़ैलों की रानी श्वेतलाना वहां पर आ गई। उसने समर को जब पहली बार पहाड़ी पर देखा था तभी उसे वो पहली नजर में पसंद आ गया था, और समर वो पहला इंसान था जिस पर उसकी नजरें दिखी और इसीलिए वो उससे शादी करने जा रही थी। क्योंकि वो चुड़ैलों की रानी है इसलिए उसके किसी भी फैसले पर कोई भी चुड़ैल कोई सवाल नहीं उठाती और सब उसके हुक्म को पत्थर की लकीर मानती हैं और उसका पालन करती हैं। वो धीरे धीरे हवा से नीचे की जमीन की तरफ आई और उससे पहले ही वो सारी चुड़ैल आगे आई। उन्होंने चंद्रिका और वीरेश के हाथ पीछे की तरफ करके पकड़ लिए और उन्हें एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। चंद्रिका श्वेतलाना की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ दो हमें, जाने दो यहाँ से, क्यों कर रही हो तुम ये सब? एक चुड़ैल होकर तुम भला इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? और राजकुमार को छोड़ दो। चंद्रिका की बात सुनकर श्वेतलाना ने एक नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। इस तरह हंसते हुए वो हवा में धरती हुई चंद्रिका की तरफ आगे आई। समर वहां पर एकदम ही कोने में उन सबसे दूर खड़ा हुआ है और वो छिपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल वहां पर उसके छिपने या वहां से भगाने के लिए कोई भी जगह नहीं। हर तरफ चुड़ैलों का पहरा और उनकी नजर है। मेरी मर्जी, मैं चुड़ैलों की रानी हूं और मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए बात ही नहीं हूं, और मुझे ये युवक पसंद आया तो मैं इसे ही शादी करूंगी, और अब तो तुम्हारे सामने ही करूंगी। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। इतना बोलते हुए श्वेतलाना वहां से आगे आई और सीधे राजकुमार समल की तरफ ही बढ़ने लगी, जो कि उसे छुपता हुआ दीवार में एकदम चिपकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां से और ज्यादा पीछे जाने की जगह नहीं थी। हर तरफ चुड़ैलों का पहरा और उनकी नजर है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, और देखो मैं इतना कोई सुंदर भी नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी सुंदर कोई और राजकुमार मिल जाएगा। तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मुझे माफ कर दो। एकदम दरी सहमी हुई आवाज में समर ने कहा, तुम नहीं चाहते तो क्या हुआ, मैं तो चाहती हूँ, और मेरे लिए बस मेरी पसंद और मेरी चाहते ही मायने रखती है और कुछ भी नहीं, इसलिए ये शादी तो आज के आज होकर रहेगी। शादी की तैयारी शुरू करो भार्गवी। अपनी खास सेविका की तरफ देखकर चुड़ैलों की रानी ने उसे आदेश दिया तो चुड़ैल की बात सुनकर वो सब तुरंत ही तैयारी में लग गए, और वीरेश चंद्रिका को उसने अपनी पूरी तरह शक्तियों से बांध दिया है जिससे कि वो लोग ना तो अपनी जगह से हिलडुल पा रहे हैं और ना ही कुछ बोल पा रहे हैं। सिर्फ उनकी आंखें खुली हुई हैं और पलके झपकाते हुए बहुत ही बेबसी से वो समर और श्वेतलाना की तरफ देख रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक तरफ ले जा रही है जहां पर उसकी चुड़ैलों ने एक हवन कुंड की तरह तैयार किया हुआ है और उसमें भस्म और पता नहीं क्या क्या डाल रही हैं, जिससे कि धीरे धीरे उसमें लगी हुई आग भड़क रही है, और वो आग नारंगी लाल रंग की ना होकर गहरे लाल और काले रंग की है, या फिर उसके आसपास काला धुआं है जो कि उस आग को भी सामान्य से अलग बना रहा है। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। श्वेत लाना बहुत ही कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उसे हवन कुंड की तरफ ही बढ़ रही है। इसके आसपास घेरा बनकर खड़े हुए उन चुड़ैलों ने कुछ मंत्र बुदबुदाने भी शुरू कर दिया और सतलाना के चेहरे पर एकदम शैतानी हंसी साफ नजर आ रही है। वही समर के चेहरे पर डर है और वो लगातार यही बोलता जा रहा है। तभी श्वेत लाना को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर घूरते हुए समर को देखा और कहा, बस अब और एक शब्द नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार मना करके मेरा अपमान करते रहोगे, इसलिए अब शादी होने तक कुछ भी मत बोलना और शादी के बाद तो मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगी। एकदम गुस्से भरी लाल आंखों से घूरकर समर की तरफ देखते हुए श्वेतलाना ने ये बात कही तो समर के मुंह से निकलते हुए शब्द वैसे ही एकदम गायब हो गए और अपनी जान की खैर मनाते हुए वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। वहां पर उन सब की आंखों के सामने उसे चुड़ैलों की रानी की शादी की तैयारी चल रही है और वो भी समर के साथ। वो समर की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से और मुस्कुराते हुए देख रही है। साथ ही उसने समर की कलाई भी अपने हाथ में बहुत ही कसकर पकड़ कर रखी हुई है और उसे देखकर ही पता चल रहा है वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। समर अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस कर रहा है। उन चुड़ैलों के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो लोग उसे कुछ करने भी नहीं दे रही है। उसका मन हो रहा है यहां से कहीं भाग जाए फिर गायब हो जाए, लेकिन उसे पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भाई वीरेश और चंद्रिका भी उनकी शक्तियों में पूरी तरह से बंधे हुए वहां जमीन पर गिर पा रहे हैं और वो तो नहीं अपनी जगह से हिलडुल तक नहीं पा रहे। सारी चुड़ैल मिलकर अपनी प्रक्रिया करने में लगी हुई है। इसके अलावा वो लोग शादी के लिए एकदम सही मुहूर्त का भी इंतजार कर रही है जो कि रात के ठीक 12 बजे का होता है। सारी शैतानी शक्तियां रात की इस वक्त ही जागृत होती हैं और चुड़ैलों की ताकत भी उस वक्त सबसे ज्यादा होती है। और अगर कोई भी चुड़ैल उस सही टाइम पर एकादशी की रात किसी इंसान से शादी करती है तो उसकी ताकत भी 4 गुना हो जाती है और वो सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाती है। इसके अलावा उसे इंसान को भी क्षत्रिय कुल का होना चाहिए और उसे चुड़ैल की रानी को जैसे ही समर के बारे में ये पता चला वैसे ही वो उसे उठा रही थी। इसके अलावा वो उसके रूप रंग पर मोहित भी हो गई थी। अभी वो बहुत ही खुश है ये सोचकर कि जिसे वो पसंद करती आखिर उसे ही वो शादी करने जा रही है और फिर शादी के बाद सब उसका ही फायदा है और वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी।
वीरेश के पास ही जमीन पर पड़ी हुई चंद्रिका ने धीमी आवाज में कहा, कुछ करो वीरेश, हम अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा नहीं सकते, कुछ तो करो, क्या पता ये चुड़ैल आगे क्या करने वाली है, कहीं इसने राजकुमार को जान से मार दिया या फिर उनकी बलि। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। चुप करो तुम, ये सब क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर तुम तो इस तरह से बोलकर इन लोगों को इस तरह के विचार दे रही हो, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं। चंद्रिका की ऐसी बात सुनकर वीरेश ने फिर से उसे डांटकर चुप करते हुए कहा। चंद्रिका पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है और वो किसी भी बात को लेकर वीरेश से कोई बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसने कहा, क्यों तुम हमेशा मुझे ही डांटते रहते हो, मुझे सच में राजकुमार की फिक्र हो रही है और हम दोनों यहाँ पर इस तरह से क्या तुम्हारी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही। चंद्रिका के इस सवाल पर वीरेश ने बहुत ही बेबसी से नहीं मैं अपना सिर हिलाया और उसके इस तरह से नहीं मैं सीरियल आने पर चंद्रिका की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करेंगे, कैसे खुद को और कैसे राजकुमार समर को बचाएंगे उस चुड़ैल से शादी करने से। दूसरी तरफ वसुंधरा उसे गुफा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और बाहर जहां से रोशनी अंदर आ रही थी वहां से ही किसी का हाथ अंदर आया और उसने वसुंधरा से कहा, इतना भी क्या सोच रही हो, मेरा हाथ पकड़ लो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वसुंधरा थोड़ा सोच में पड़ गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। विक्रांत के आने से पहले वो कैसे भी करके वहां उसे गुफा से निकलना चाहती थी और उसे फिलहाल यही एक रास्ता नजर आया जहां पर वो खुद से नहीं निकल सकती थी, इसलिए उसने अनजान शख्स की बात सुनकर वसुंधरा ने उसे हाथ को पकड़ लिया और उसके पड़ते ही वहां पर उसे अंधेरी गुफा में एक बहुत ही तेज रोशनी हुई। हो तो रोशनी इतनी तेज सफेद और चमकदार थी कि जिसकी वजह से वसुंधरा की आंखें बंद हो गई और वो पूरी जगह इस तरह की सफेद रोशनी से भर गए। वसुंधरा ने जैसे ही वो हाथ पकड़ा उसे कुछ तो अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे हाथ में उसे अपनी तरफ खींचा और एकदम किसी हल्के से पंख की तरह उड़ते हुए वसुंधरा हवा में उड़ गई और उस जगह से बाहर निकल आई। उसे रोशनी की चमक की वजह से वसुंधरा ने दूसरा हाथ अपनी आंखों के आगे लगा रखा था और अपनी आंखें कसकर बंद की हुई है क्योंकि उसे ऐसा लगा था जैसे वो रोशनी सीधे उसकी आंखों में लगी तो फिर वो अंधी हो जाएगी और उसे दिखाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इससे बचने के लिए उसने अपनी आंख बंद कर रखी,
लेकिन जब वो बाहर आई और उसे अपने आसपास कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन उसके हाथ में अभी भी उसे वो अजनबी हाथ महसूस हो रहा था। वसुंधरा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सामने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने मुस्कुराता हुआ एक आदमी खड़ा है, जिसकी उम्र देखने पर कोई भी अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कितनी होगी। वो नौजवान ही लग रहा है, यही कोई 20-25 वर्ष का। उसके चेहरे पर एकदम हल्की मुस्कुराहट है और वो वसुंधरा की तरफ ही देख रहा है। उसके चारों तरफ से इस तरह की सफ़ेद चमकदार रोशनी निकल रही, यहाँ तक कि उसका चेहरा चमक रहा है और उसकी आँखों की पुतलियों में भी वो सफ़ेद चमक नज़र आ रही है। कहानी जारी है। आज के एपिसोड में जितने भी मिस्टेक हो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो गया आज का एपिसोड लिखने और अपलोड करने में, इसलिए हम 2-3 बार रीड करके गलतियां दूर नहीं कर पाए, एक बार ही पढ़ा बस। लेकिन आप लोग बताओ कैसा था आज का एपिसोड, और कौन है वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी जिसने वसुंधरा की मदद की, और क्या सच में वो कोई मददगार है या फिर कुछ और ही है, और आखिर में वो आवाज़ किसकी है।